हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी वो जल्दी से कड़क आवाज में बोला, जस्ट शट अप, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा फालतू की बातों में रहता है। खबरदार जो तुमने मुझसे कोई भी सवाल पूछने की कोशिश की। और याद रखो, यहां मालिक मैं हूं, यहां सवाल पूछने का हक अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अपनी फालतू बकवास बंद करो और काम पर ध्यान दो। ये बोलकर सिद्धार्थ वहां से जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वो पूरी तरह से अटक चुका था। ये देखकर सिद्धार्थ हैरान हो गया और लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वहीं सिद्धार्थ को दरवाजे के साथ जूझता हुआ देखकर झलक की अचानक हंसी छूट पड़ी। सिद्धार्थ उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम दरवाजा खोल सकती हो तो जाओ, जाकर कोशिश करो, खोलो दरवाजा। झलक तुरंत दरवाजे के पास गई। ऐसा लग रहा था कि वो झटके में जाकर दरवाजा खोल देगी, लेकिन वहां पहुंचकर वो अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ की ओर देखकर झलक बोली थी, लेकिन मैं आपके लिए दरवाजा क्यों खोलूं? वैसे भी दरवाजा आपने खुद बंद किया था मिस्टर खुराना, तो कोशिश भी आप ही कीजिए। और फिर क्या यह अच्छा लगेगा कि एक बॉडी बिल्डर आदमी होते हुए एक मामूली सी नाजुक गांव से आई हुई गंवार लड़की दरवाजा खोले? क्या ये बात आपको शोभा देगी मिस्टर खुराना? झलक के इस तंज भरे लहजे में कही गई बात सिद्धार्थ के गुस्से को और भड़का गई। उसके लिए झलक को इस तरह बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल हो चुका था। वो गुस्से में आकर दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगा, लेकिन सिद्धार्थ के ही आदेश पर पूरे ऑफिस, स्टोर रूम और हर जगह सॉलिड क्वालिटी के दरवाजे लगाए गए थे, जिन्हें इस तरह आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। अब तो सिद्धार्थ अपना सिर पकड़कर खड़ा रह गया। उसे लगने लगा था कि वो इस लड़की के साथ इस तरह एक ही जगह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। गुस्से और बेचैनी में उसने लगातार कई बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। उसका एटीट्यूड और चिढ़ बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, झलक को डराने धमकाने की जल्दी में वो अपना फोन भी टेबल पर ही छोड़ आया था, और ऊपर से सिद्धार्थ के कहने पर रौनित ने झलक से फोन ले लिया था। उसे लगता था कि अगर झलक के पास फोन रहेगा तो वो काम के बजाय फोन में लगी रहेगी, इसलिए फोन हैंडओवर करवा दिया गया था। और ये बात कि सिद्धार्थ स्टडी रूम में गया है किसी को भी पता नहीं थी। लगातार कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो सिद्धार्थ गहरी गहरी सांस लेने लगा। ऊपर से वहां पानी तक का कोई इंतजाम नहीं था। अब झलक को भी थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी। वो तुरंत सीसीटीवी कैमरे की ओर देखते हुए बोली, मिस्टर खुराना, आप सीसीटीवी के थ्रू अपने चेले मतलब रौनित को क्यों नहीं बोलते कि वो दरवाजा खोल दे? ये सुनकर सिद्धार्थ को उसकी भाषा बुरी तो लगी, लेकिन आइडिया उसे पसंद आ गया। वो झुंझला कर बोला, उसे चेला नहीं असिस्टेंट कहते हैं, समझे तुम? और अभी फिलहाल तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। झलक ने मन ही मन कहा कि ऐसी सिचुएशन में भी इन्हें यही चिंता है कि मैं किसे किस तरह संबोधित कर रही हूं। सिद्धार्थ सीसीटीवी कैमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर इशारे करने लगा ताकि कोई उसे देख ले और दरवाजा खोल दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत इस वक्त उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही। जिस कैमरे से वो थोड़ी देर पहले झलक को देख रहा था, वो कैमरा बंद हो चुका था और उसे बंद किया था रौनित ने। पिछले एक दो घंटे से रौनित लगातार सिद्धार्थ को मीटिंग की डिटेल्स दे रहा था, और उसने ये भी नोटिस कर लिया था कि उसका बॉस बार बार सिर्फ सीसीटीवी के जरिए झलक को ही देख रहा है। उसे ये बात अजीब लगी। वो सोचने लगा कि अगर सिद्धार्थ इसी तरह पूरा दिन झलक को देखते रहेंगे तो काम कब करेंगे, कंपनी का तो भारी नुकसान हो जाएगा। यही सोचकर रौनित मॉनिटर रूम गया और स्टोर रूम का सीसीटीवी बंद करवा दिया। इसके बाद वो मीटिंग की डिटेल्स देने सिद्धार्थ के केबिन में गया, लेकिन तब तक सिद्धार्थ वहां से जा चुका था। इधर सिद्धार्थ को कैमरे के सामने हाथ हिलाते देख झलक को जोर जोर से हंसी आने लगी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। झलक को हंसते देख सिद्धार्थ के पूरे बदन में जैसे आग लग गई। वो तुरंत उसके करीब आया। सिद्धार्थ को अपनी ओर बढ़ते देख झलक दो कदम पीछे हटी, लेकिन सिद्धार्थ और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो करीब आता गया, झलक पीछे हटती गई। आखिरकार झलक की पीठ दीवार से लग गई। वो साइड से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर रास्ता रोक लिया। दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की तो उसने दूसरी ओर भी हाथ फैला दिया। ये देखकर झलक घबराकर बोली, मिस्टर खुराना, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। सिद्धार्थ उसकी ओर झुकते हुए बोला, क्या हुआ, बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें, हंसो हंसो। फिर उसने ठंडे और डरावने लहजे में कहा, तुमने एक चीज नोटिस की है झलक, अगर मैं यहां इस सुनसान जगह पर तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारी जान ले लूं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनते ही झलक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। उसे एहसास हुआ कि वो सही कह रहा है। अगर इस जगह पर वो कुछ भी कर दे तो शायद उसे बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी झलक के कानों में अपने भाई के रोने की आवाज गूंजने लगी। तब झलक ने जल्दी से कहा था, नहीं मिस्टर खुराना, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप इस तरह मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे तो दादी को बहुत बुरा लगेगा और दादी आपको नहीं छोड़ेंगी। अब आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन तभी सिद्धार्थ बड़े ही मजे से मुस्कुराते हुए बोला था, अच्छा, लेकिन दादी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम मुझसे शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और जब भी तुम्हें मौका मिलेगा तुम सबको छोड़कर यहां से भाग जाओगी। वो ठंडे लहजे में आगे बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं दादी से कह दूंगा कि तुम सबको छोड़ छाड़ कर अपने गांव चली गई हो। तुम दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें कुछ बताया ही नहीं। सिद्धार्थ को इतनी आसानी से ये सब कहते देख झलक को सच में घबराहट होने लगी थी। वो सिद्धार्थ को अच्छी तरह जानती थी, उसकी सनक और उसका घमंड। वो कुछ भी कर सकता था। घबराहट छिपाते हुए झलक हल्की सी आवाज में बोली थी, लेकिन मिस्टर खुराना, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरी जान क्यों लेंगे? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, और वैसे भी मैंने आपसे शादी नहीं की है। शादी तो आपने मुझसे की है, इसके बदले तो मुझे आपकी जान लेनी चाहिए, आपको मेरी नहीं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये संदेह ही सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस जहर था। वाकई, वो बोला, बात बनाने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की, वो आगे झुकते हुए बोला। क्या तुम्हें नहीं पता कि उस शादी के लिए तुमने मुझे मजबूर किया था? तुमने मेरा फायदा उठाया था, और लोगों का फायदा उठाना ये काम तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। और वैसे भी तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी स्पॉइल हुई है। वाकई तुम्हारे जैसा मनहूस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर झलक के दिल में डर सा बैठने लगा था, और ऊपर से मनहूस सुनकर उसकी सांस अटक सी गई। उसने तुरंत अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। मिस्टर खुराना, झलक बोली, आप मेरे साथ टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मेरी जान तो आप कभी भी ले सकते हैं, मैं तो आपके साथ ही रहती हूं, लेकिन फिलहाल दरवाजा खुलवाइए प्लीज। वो घबरा कर बोली, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ साथ यहां दम घुटने से आपकी और मेरी दोनों की ही जान चली जाए। इस कमरे में ऑक्सीजन के नाम पर अगर कुछ है तो बस एक खिड़की। हमें खिड़की से चिल्लाकर लोगों को मदद के लिए बुलाना चाहिए। प्लीज किसी को आवाज लगाइए। झलक की बात सुनकर सिद्धार्थ का ध्यान उस छोटी सी खिड़की की ओर गया। बिना देर किए वो जाकर बाहर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। दरअसल ये सब भी सिद्धार्थ खुराना के बनाए हुए सख्त रूल्स की वजह से था।
ऑफिस के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ काम, कोई इधर उधर भटके तो सीधे नौकरी से बाहर। स्टोर रूम ऑफिस के बैक साइड में था, वहां तो वैसे भी कोई आता ही नहीं था। सिद्धार्थ जितना मर्जी चिल्ला ले सब बेकार था। उधर दूसरी ओर रोने तब पूरी तरह परेशान हो चुका था। सिद्धार्थ खुराना कुछ मिनट कहकर गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं थे। मीटिंग्स का टाइम धीरे धीरे खत्म हो चुका था। कुछ बिजनेसमैन गुस्से में उठकर जा भी चुके थे, लेकिन सीधे मुंह खुराना के खिलाफ कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब ऑफिस का टाइम भी खत्म होने वाला था।